हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अबीर जोया को पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था। वो जोया से किसी भी तरह की बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन जोया को अबीर की खामोशी काट रही थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मन बार बार अबीर से झगड़ा करने को कर रहा था। वेल, जैसे ही जोया ने देखा कि अबीर बिना उससे कुछ बोले बिस्तर के एक सिरे पर जाकर लेट गया है, तो जोया को काफी बुरा लगा और वो अबीर को गुस्सा दिलाने के रास्ते खोजने लगी। अभी जोया सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर खाना लिए एक लड़का वहां आ गया। अबीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसके कमरे में आए, लेकिन जोया ने उसे जानबूझकर अंदर आने के लिए कहा था। अबीर झूठ-मूठ आंखें बंद किए हुए पड़ा हुआ था, लेकिन बोल कुछ नहीं रहा था और उसके चेहरे से लग रहा था कि जोया का उस नौकर को अंदर बुलाना उसे नागवार लगा था, क्योंकि उसकी भौहें कन गई थीं, जो जोया ने बखूबी नोटिस किया था। जोया ने उस लड़के से एक टेबल पर खाना लगाने को कहा और उससे बातें करना शुरू कर दिया। जोया, तुम कब से काम कर रहे हो यहाँ पर?
वो बीबी जी, हमें तो यहाँ काम करते हुए पूरे 5 साल हो गए हैं।
ओह अच्छा, तो तुम्हारी शादी हो गई? शादी के नाम पर वो लड़का शर्मा गया और शर्माते हुए बोला,
वो बीबी जी, अभी माँ ने एक लड़की तो देखी है, लेकिन हम अभी खूब पैसा कमाना चाहते हैं ताकि कोई परेशानी न हो।
ओह अच्छा, तो तुम्हारी शादी हो गई? तब अच्छा, तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ?
जैसे ही जोया ने ये कहा, उस लड़के के गाल टमाटर जैसे लाल हो गए और शर्माते हुए बोला,
ये आप क्या कह रही हैं बीबी जी?
तभी जोया ने अबीर का चेहरा देखा, जहाँ उसके माथे पर ढेर सारे सिलवटें उभर आई थीं।
जोया मन ही मन सोची, लगता है मेरा फेंका हुआ पासा काम कर रहा है।
तब जोया ने उस लड़के को शर्माते हुए देखा। उसे देखकर जोया की हंसी छूट गई। जब उसने जोया की बात का कोई जवाब नहीं दिया, तब जोया फिर बोली,
बताओ क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ?
जैसे ही जोया ने ये कहा, हाँ बीबी जी, आप तो बहुत सुंदर हो, भला आपको कौन पसंद नहीं करेगा? जैसे ही उस लड़के ने ये कहा, अबीर का सब्र जवाब दे गया। उसने अपने तकिए के नीचे से बंदूक निकाली और उसे लड़के के माथे से सटा दिया और गुर्राते हुए बोला,
अबीर राठौड़ की बीवी को आंख उठाकर देखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई?
अबीर का ये रिएक्शन देखकर जहां जोया की हंसी छूट पड़ी, वहीं उस लड़के का सूसू उसकी पैंट में निकल गया और उसकी टांगे कांपने लगी थीं।
जोया ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए उस लड़के को वहां से जाने का इशारा किया और वो लड़का जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला।
जोया उसको भागते हुए देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाई और जोर जोर से हंसने लगी।
जोया को हंसते देख अबीर का गुस्सा एकदम से ही शांत हो गया और वो उसे देखने लगा। उसके बाद उसने किसी को फोन किया और बोला, मेरे कमरे को क्लीन कराओ फास्ट। ऐसा कहकर अबीर जोया का हाथ बाजू से पकड़ते हुए खींचता हुआ बालकनी में ले गया और उसे एक बार फिर उस रेलिंग से सटाकर कहने लगा, आखिर चाहती क्या हो तुम? क्यों तुमने मेरा चैन और सुकून सब छीन लिया है? आखिर क्यों तुम मुझे चैन से जीने नहीं देती हो? क्यों तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता? क्यों अभी राठौड़ को कमजोरी बन बैठी हो तुम? क्यों 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 क्यों?
ऐसा कहते हुए अबीर ने अपना हाथ जोर से उस रेलिंग में दे मारा, जो स्टेनलेस स्टील की बनी हुई थी, काफी मजबूत।
अबीर को चोट भी आई, लेकिन उस वक्त उसके दिल का दर्द उस चोट के आगे कुछ भी नहीं था।
जोया अबीर की बातें सुनकर एकदम से खामोश हो गई। तब जोया ने थोड़ा शांत मन से कहा,
देखिए अबीर साहब, मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ, मेरी जिंदगी में अब किसी भी मर्द के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन आपने बहुत एहसान किए हैं मुझ पर, मेरी जान बचाई है। वैसे एक बात बोलूं अबीर साहब, मेरी जीने की कोई खास इच्छा नहीं है, मैं सिर्फ इस बच्चे को जन्म देने के लिए जिंदा हूँ, क्योंकि मैं अपने साथ किसी और की जान नहीं ले सकती हूँ और इस बच्चे की सांसें तो मुझसे ही जुड़ी हुई हैं।
अबीर साहब, शायद मैं आपको एक बीवी का प्यार कभी न दे पाऊं, लेकिन मैं आपसे दूसरा रिश्ता बनाना चाहती हूं।
जोया की बात सुनकर अबीर के कान खड़े हो गए और वो बोला, रिश्ता? कौन सा रिश्ता?
तब जोया बोली, अबीर साहब, आज तक मेरी जिंदगी में आए मर्दों ने सिर्फ मेरे जिस्म की ख्वाहिश की है, कोई भी मेरा साथी नहीं बन पाया। मैं आपसे दोस्ती का रिश्ता बनाना चाहती हूँ, क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे?
जैसे ही अबीर ने ये सुना, उसका दिमाग सुन हो गया। वो ये सोचकर हैरान था कि जिस लड़की से उसकी शादी हुई है, वो उसकी बीवी बनने के बजाय उसकी दोस्त बनना चाहती है। अबीर को समझ ही नहीं आया कि वो जोया की बातों का क्या जवाब दे।
अबीर को खामोश देखकर जोया से रहा नहीं गया और वो आगे बोली, मैं जानती हूँ आपको ये लग रहा होगा कि आपकी बीवी आपसे बीवी बनने को नहीं बल्कि दोस्त बनने को कह रही है, तो ये आपको काफी अजीब लग रहा होगा। लेकिन अबीर जी, मुझे नहीं पता मैं कभी आपको अपने शौहर का दर्जा दे भी पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं वाकई आपकी दोस्त बनना चाहती हूँ, क्योंकि जितना मैंने आपको जाना है, समझा है, तो इतना तो मैं आपको समझ ही गई हूँ कि आप कोई बुरे इंसान नहीं हैं, पर शायद आपके हालातों ने आपको थोड़ा सा जिद्दी, अकड़ू, बदतमीज बना दिया है। जैसे ही जोया ने अबीर को एक साथ ये सब बातें बोली, अबीर उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। तब जोया को रियलाइज हुआ कि उसने बातों ही बातों में अबीर को कह क्या दिया था। तब जोया अपने होंठ काटते हुए बोली, वो मेरा मतलब था कि आप इतने अकड़ू से नहीं होते, उसने आंखें चुराते हुए कहा। तब अबीर कुछ देर तक उसे देखने लगा और बोला, ठीक है, अगर तुम अभी राठौड़ की बीवी न बनकर दोस्त बनना चाहती हो तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं एक बात तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, अबीर राठौड़ की बीवी बनना जितना आसान था उतना ही मुश्किल तुम्हारे लिए अबीर राठौड़ का दोस्त बनना होगा। अबीर राठौड़ की दोस्ती कितनी मुश्किल होती है ये तुम्हें अब पता चलेगा। अब से अबीर राठौड़ एक बीवी की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह ट्रीट करेगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है? एक बार अच्छी तरह से सोच समझकर ही जवाब देना। अबीर की बातें सुनकर जोया को कुछ डर सा लगने लगा और वो थोड़ा सोचते हुए बोली, क्या वाकई इनकी दोस्ती बहुत मुश्किल होगी मेरे लिए? जोया मन ही मन सोची, अब अगर तूने कह ही दिया है तो तू पीछे नहीं हट सकती जोया, वैसे भी दोस्ती की बात तूने ही की है, अब इस अकड़ू की बातें सुनकर अगर तू पीछे हटी तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं नहीं जोया, हिम्मत रख और कह दे तुझे कबूल है अबीर राठौड़ की दोस्ती, कह दे तू किसी से नहीं डरती है और वैसे भी तुझे डराने के लिए ही ये ऐसी बातें कर रहा है, और दोस्ती में ये मुझे पहाड़ थोड़े ना चढ़ाएगा, कम से कम इस दोस्ती की आड़ में मैं ये बीवी बीवी से तो बच जाऊंगी। जोया सोचते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, मुझे आपकी दोस्ती कबूल है। अबीर ने एक पल जोया के बढ़े हुए हाथ को देखा और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते जोया से हैंडशेक कर लिया, और अचानक अबीर ने हैंडशेक के बाद जोया को गले से लगा लिया। जोया अबीर के इस एक्शन पर हैरान रह गई। वहीं दूसरी ओर अरहम ने अपने आदमियों को शहर के बाहर भेज दिया था जोया की खोज करने के लिए। ना जाने क्यों अरहम को यही लग रहा था कि जोया इस शहर में नहीं है। जोया ने अरहम को मार मार कर अधमरा सा कर दिया था। अरहम चाहता तो उसे जवाब दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि वो तो जोया को मना कर उसे लेने के लिए आया था, और जोया उसे बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसके द्वारा मारी गई मार उसे अलग ही एहसास करा रही थी।
अरहम ने अब सोच लिया था कि जोया के मिलने के बाद वो उसे अब अरमान भाई के हवाले कर देगा, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक अरमान ने उसकी हर जायज नाजायज ख्वाहिश को पूरा किया है, तो क्या अपने भाई के लिए वो अपने प्यार को कुर्बानी नहीं दे सकता है? अरहम जानता था जोया अब उसके भाई की जिद और चाहत बन चुकी है, जिसे अब वो किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता है। बस अब अरहम ने उन दोनों के रास्ते से हटने का फैसला कर लिया था और पूरे जी जान से जोया को ढूंढने के लिए लग चुका था। वहीं दूसरी ओर राजवीर के अंकल शमशेर सिंह जी ने राजवीर के फोन को सुनने के बाद कुछ देर सोचा था और उन्होंने राजवीर को बचाने का फैसला कर लिया था। आखिर राजवीर उनका बेस्ट एजेंट था, न जाने कितने ही केस उसने ईमानदारी से सॉल्व किए थे। शमशेर जी सोच रहे थे राजवीर ने अनुराधा के साथ बहुत गलत किया था, लेकिन अब पिछले 10 दिनों में उसे अपने किए की सज़ा मिल चुकी थी। राजवीर एक बहुत अमीर आदमी था, उसके पास कितनी ही प्रॉपर्टी थी जो उसके नाम पर थी। शमशेर जी ने सोच लिया था राजवीर को बचाकर वो उसकी सारी प्रॉपर्टी अब एक अनाथ आश्रम को डोनेट करा देगा और उसे एक स्पेशल मिशन पर भेज देंगे। यही सोचकर शमशेर जी अपना प्लेन रेडी करने लगे थे। जोया को अबीर ने बहुत तेज से गले लगा लिया था। जोया को कोफ्त सी होने लगी थी और जोया ने अबीर के सीने ने नोच लिया था। आउच, ये क्या कर रही हो तुम जोया? तुमने इतने टाइट हग क्यों किया? मैं अपने दोस्तों को इतनी देर तक और टाइट ही हग करती हूँ। जोया उसे घूर कर रह गई। तब अबीर बोला, चलो अंदर खाना खाते हैं, चलो। अबीर ने जोया की बाजू पकड़ी और लगभग उसे घसीटते हुए अंदर ले गया, और जोया ने अंदर जाकर देखा पूरा का पूरा कमरा एकदम से क्लीन हो चुका था। इतने में अबीर और जोया बालकनी में थे। रूम सर्विस वालों ने पूरा कमरा क्लीन कर दिया था। अबीर ने अपने कुछ आदमियों को वहां रखा हुआ था जो उसकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रख रहे थे। अबीर ने जोया से कहा, जोया एक काम करो, तुम खाना लगाओ, मैं हाथ मुंह धोकर आ रहा हूँ।